मैं क्या बताऊँ, छोड़ो
ना, बस छोड़
ना ही बताऊँ तो अच्छा है।
अच्छा
विलेज टेस्ट का नंबर 9052323663 विलेज टेस्ट का नंबर है। हमारे इस सेगमेंट को डॉक्टर नाजिया रहमान भी ताउन देती हैं। देखिए साहब, दिस इज द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनको अपनी जॉब से डेंटल बेनिफिट होता है, जिसमें आप इम्प्लांट भी करा सकते हैं, क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स वगैरह। मेरा ख्याल है जिस उम्र में रिटायर होते हैं उसमें डेंचर वेंचर तो ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं पूरा डेंचर एक आध दांत लगाना पड़ जाता है, तो बहरहाल इम्प्लांट आप करा
It's
सकते
so
हैं।
So sad to say or yeah. to think about it. My God.
Dentistry on Mrs. Saga, laser tooth whitening है, नए पेशेंट्स को वेलकम कर रही हैं डॉक्टर नाजिया रहमान। She has two clinics, 150 Yellow Evans के बाद Brampton में और now second location, माशाल्लाह it's gorgeous, 65 Mount Pelier Street के ऊपर है। Dentistry on Mrs. Saga, नंबर आप नोट कर लीजिए 9058721100, 872-1100। अब वो बताइए कि कल एक वाक्य हुआ है और ये चमन के सरहद के करीब हुआ है। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के ऑफिसर थे या पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने तो खैर कुछ नहीं किया, बल्कि इसकी वीडियो भी एक है जिसमें वो जो बॉर्डर सर्विसेज का बंदा है वो बेचारा बड़े मज़े से रेलिंग के ऊपर बैठा हुआ है। ये एक रास्ता है जहाँ से लोग पैदल ट्रैवल कर सकते हैं बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के दरमियान ना, तो अब जब वो एक आदमी क्रॉस कर रहा है इस रास्ते को और वहीं से जनाब जो दूसरी साइड पे तालिबान के लोग थे उन्होंने बेधड़े फायरिंग करी शुरू कर दी, जो हमारा एक पुलिस का ऑफिसर बेचारा रेलिंग के साथ टेक लगा के बैठा हुआ था या उसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था उससे तो भाग के अपनी जान में चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली दो लोगों की डेथ हो गई, एक बच्चे की डेथ हुई है, एक बड़े की, एक शख्स को शायद पकड़ लिया है। आज ISPR ने यकीनन चमन के इलाके में ये हुआ है और आज उन्होंने ये कहा है कि जैसे एक बंदे को अरेस्ट किया है उसको पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाए। मगर यहाँ पर वो कहते हैं ना, जोश में बाहोश रहने में तुम्हारी शान है। जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे उन्होंने जवाबी फायरिंग नहीं की, दैट्स ऑल व्हाट इट इज़, ठीक है। और क्रिकेट को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम ट्राइंग के एक हमारे बहुत अच्छे साथी हैं उनको भी लेके आए। जनाब शाहिद अफरीदी साहब इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, उनसे जब एक इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा पाकिस्तान मेरा जिम्मेदारी है और मैं यहाँ पे अपनी चैरिटी के लिए भी आया हूँ और गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी मैं कुछ चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आया। जब उनसे इमरान खान साहब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहला बंदा था जिन्होंने इमरान भाई को वोट दिया था, 2013 में मैंने इसको ज्वाइन किया था और शायद 2020-21 में फिर इन्होंने छोड़ दिया था। मगर जब उनसे पूछा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा नहीं 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 भाई, मैं प्राइम मिनिस्टर बनने का मेरे कोई इरादा नहीं है, ठीक है। ये भी सूरत हाल कवर की, मगर न्यूज़ को इन चीज़ों को इन डिटेल कवर करेंगे जनाब फयाज विलाना साहब। स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया जो पूरे पूरे सेगमेंट को आप तक पहुंचाने में हमें ताबुन देते हैं। आमिर शमसी एक प्रोग्राम करवाया करते हैं और 20 साल से उनकी ये रिवायत है, खैबर टू मेहरान, जर्नी थ्रू पाकिस्तान। अभी भी दिस कमिंग सैटरडे 7 अक्टूबर का दिन है, 7 अक्टूबर को ये प्रोग्राम होने जा रहा है और सेलिब्रेशन स्क्वायर पे ही होने जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर पहुंचिएगा, इसकी कोई टिकट नहीं है। मैं बल्कि आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहें ना तो आप शो को भी इंजॉय कीजिएगा, आप तशरीफ लाएं, अपनी मैट्स अपनी सीटिंग के लिए ज़मीन पे बिछाने के लिए लें, अपनी कुर्सियाँ लेके आ जाएं, आएं आके बैठें वहाँ पे और शहजाद रॉय शाम में परफॉर्म करेंगे। स्पेशली केम ऑन 3rd of this October और कल रात भी वो प्रैक्टिस अपनी करते रहे। आज ही इज़ गोइंग टू बी एट 7 o'clock कढ़ाई पॉइंट पर, ख्याल है मिसेस सागा वाली लोकेशन पे होगा, तो क्योंकि वो एक मीडिया मीट एंड ग्रीट करने जा रहे हैं और सैटरडे को परफॉर्मिंग लाइव एट सेलिब्रेशन स्क्वायर पाकिस्तान का, टोटली पाकिस्तान, वी डोंट एक्सपेक्ट बट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पाकिस्तानीज, प्लीज कम और आप अपनी प्रेजेंस जरूर दीजिएगा। आमिर शमसी को कॉल कीजिएगा और ऑफ कोर्स इट्स अ फ्री इवेंट है तो बेशुमार लोग होंगे। अगर आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनसे बूथ के बारे में भी बात कर सकते हैं। आमिर ने क्योंकि 7-8 दिन में ये प्रोग्राम अरेंज किया है, 28-29 को मुझे इनकी कॉल आती है और 7 तारीख को प्रोग्राम था और 30 को इसने टिकट भेजी है उनकी शहजाद रॉय की, تو بہرحال آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ عامر شمسی کو کال کر لیں 416-6610-416-6617-861. آئی ایم سو سوری کہ آئی ہیو ٹو پلے دیز کمرشلز بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیر از این ایکسپینس فار ایوری تھنگ. ہمیں اس ایکسپینس کو کور کرنے کے لیے ان اسپانسرز کی مدد کی ہمیشہ ضرورت رہی. ایک ملاقات کی طرف بڑھتی ہوں. جناب فیاض ویلانا صاحب میرے ساتھ ہیں. ویلانا صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم.
بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. فیاض ویلانا صاحب, میں سب سے پہلے آپ یقیناً پاکستان کی صورتحال عثمان ڈار کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. ان کی والدہ نے تو بڑا اسٹرانگ میسج دے دیا ہے, جبکہ عثمان نے جو انٹرویو دیا وہ بھی انہوں نے ٹیلی ویژن سیٹ کے اوپر نہیں دیا, انہوں نے کامران شاہد کے گھر آ کے دیا ہے. میں کیونکہ ہمارے چند ایک بھائی بہن ہیں وہ بڑا خوش ہوتے ہیں یہ کہہ کے فلاں بندہ پارٹی سے آؤٹ ہے, چاہے وہ نواز شریف ہوں, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, چاہے وہ عمران خان ہوں. دے ڈونٹ کنسیڈر کہ ہم کیا بو رہے ہیں. ابھی بھی میرے کتاب ہاتھ میں کتاب نامہ ہے, شہاب نامہ, اور میں اس کی ایک تاریخ کا ایک صفحہ پڑھی تھی جو میں اس وقت آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی. اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی شیئر کہ تاریخ کے بہت سے حقائق ہوتے ہیں جو کتابوں کے بیچ میں بند ہو جایا کرتے ہوتے ہیں, اور پھر جب یہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو یہ کتابیں جب لکھی جاتی ہیں, اور آپ سوچئے اس وقت کے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے دل میں کیا اثرات بٹھاتے ہیں. اور اگر یہ معاملہ اسی طرح رہا, جھوٹ رہا, تو کل کلاں کو آج سے 25 سال کے بعد, یا ہو سکتا ہے جب کبھی دوبارہ کوئی پارٹی آتی ہے, تو عثمان ایک کتاب لکھتے جس کے بیچ میں پورے کے پورے حقائق لکھے کہ کس نے مجبور کیا تھا کیا, تو دیٹ ول ناٹ بی رائٹ. الٹیمیٹلی ڈی فیم کون ہوگا؟ میرا اپنا ملک ڈی فیم ہوگا نا, کون ڈی فیم ہوگا؟ الٹیمیٹلی بہت سے لوگ اس سے نتائج اخذ کریں گے. ہماری فوج کے اوپر الزام آئے گا, یا جس کے اوپر بھی آئے, جس پولیٹیشین کے اوپر بھی آئے. ایک طرف ہم جمہوریت کو روتے ہیں, اور دوسری طرف جب میرے دشمن کے پیٹ میں چھریاں ماری جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر تو بالکل صحیح ہوا تھا جب پارٹیشن کے وقت جو ہوا تھا, اگر ہندو یا سکھ اس کے بارے میں کہتے ہیں تو دیسے درائج تھی, دونوں طرف سے ظلم ہوا تھا. کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ عثمان نے ایک بیان دیا ہے, مگر ان کی والدہ کا جو بیان ہے وہ بڑا اگریسو بیان ہے, اور انہوں نے باقاعدہ چیلنج کیا ہے کہ میں نے تو پارٹی نہیں چھوڑی. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟
جو عثمان ڈار صاحب کا بیان ہے نا, اس کو پورے کانٹیکسٹ میں لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب کو پیش کون کر رہا ہے؟ وہ ہمارے ایک فلم ساز ہیں, بیسیکلی وہ فلم میکر ہیں, فلمیں بناتے ہیں. حادثاتی طور پر وہ آ گئے ادھر میڈیا میں, اور ہمارے یہ جو پیرا ٹروپرز ہیں اور یہ حادثاتی جرنلسٹ جو ہوتے ہیں, ان سے ہمیشہ ہمیں اختلاف یہی رہتا ہے کہ بھائی آپ نے جرنلزم کی الف بے نہیں سیکھی ہوئی, آپ نے اس طرح کا لیگ ورک نہیں کیا ہوا, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کون سا فقرہ, کون سا لفظ, کون سی بات آپ کر رہے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. حادثاتی طور پر آپ کو کہیں موقع مل جاتا ہے, آپ 2-4-6 دن آپ کی واہ واہ ہو جاتی ہے, بلے بلے ہو جاتی ہے, اس کے بعد بھی آپ کوشش نہیں کرتے کہ آپ بیسک جرنلسٹک ایتھکس جو ہیں اس کو لرن کر لیں, اور پھر اکارڈنگلی آپ کام کریں. آپ ایک پروفیشن میں آ گئے ہیں, یہ فلم میکنگ نہیں ہے. کامران شاہد صاحب نے ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلی عید پہ انہوں نے ایک فلم بنائی تھی, اس کا نام تھا ہوئے تم اجنبی, اور اس میں انہوں نے آئی ایس پی آر کی فلم تھی. تو بیسیکلی ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو یہاں سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ آئی ایس پی آر کے فلم ساز ہیں, آئی ایس پی آر کی فلمیں بناتے ہیں اور اسے ریلیز کرتے ہیں اور وہاں سے کروڑوں اربوں روپیہ کماتے ہیں. تو وہ ان کی خواہش پہ ایک بندے کو جو 25-30 دن سے غائب تھا, زیر حراست تھا, حب سے بیجار کچھ رکھا گیا تھا, کہاں تھا, کس حال میں تھا, کیا تھا کیا نہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں, اچانک وہ ان کے گھر میں جاتا ہے اور وہاں پہلے کیمرے ویمرے سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہاں ان سے ہاتھ میں لا کے بیٹھتا ہے اور بات شروع کر دیتا ہے. اور کامران شاہد صاحب یہ ہوئے تم اجنبی کے بعد انہوں نے یہ دوسری فلم ابھی پیش کی ہے, عثمان ڈار ہوئے اجنبی. لیکن عثمان ڈار ہوئے اجنبی کی 45 منٹ کا یہ جو انٹرویو ہے, اس کا سارا امپیکٹ 50 سیکنڈ کے اس بیان نے زیرو کر دیا ہے, جب ان کی والدہ محترمہ نے کیمرہ آن کر کے 50 سیکنڈ کی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جو آپ نے بھی سنی ہے, سارے لوگوں نے سنی ہے. شاید عثمان ڈار کا انٹرویو اتنے لوگوں نے نہیں دیکھا جتنا ان کی والدہ کا بولی ہے, جو کہ ایک پولیٹیشین نہیں ہے, ایک گھریلو خاتون ہے اور ساری زندگی وہ گھر میں ہی رہی ہیں. لیکن اب انہوں نے دیکھا ہے کہ جس طرح جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو اس کے بیٹوں کے ساتھ عمر ڈار, عثمان ڈار اور باقی ان کے بچوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح ان کے گھر میں پولیس یا نامعلوم افراد گئے تھے, جس طرح ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی تھی, وہ ویڈیوز لوگوں نے دیکھی, پھر وہاں جس طرح انہیں اللہ معاف کرے ہم وہ الفاظ بھی بیان نہیں کر سکتے جو عثمان ڈار کی والدہ بیوی اور بہنوں کو کہا گیا تھا, وہاں جو نامعلوم افراد تھے انہوں نے جو جو کہا تھا, انتہائی غلط لفظ استعمال کیے تھے انہوں نے, وہ کیسے ایک ماں برداشت کر سکتی ہے؟ ہمت ہے, سلام ہے اس ماں کو کہ وہ سامنے آئیں اور انہوں نے کھل کے ایک سٹیٹمنٹ دی 50 منٹ کی, وہ ان کی سٹیٹمنٹ. خواجہ آصف کی سیاست بھی انہوں نے زیرو کر دی اس حلقے میں, حلقہ بچا لیا اپنے بیٹے کا, اب وہ پتہ نہیں ان کے بیٹے کا حلقہ ہے یا نہیں, کم از کم وہ اس خاتون کا حلقہ اب ہو گیا ہے, اب وہ خود کھڑی ہوں, ان کی بہو کھڑی ہوں, ان کی بیٹی کھڑی ہوں, کوئی ان کا اور بیٹا کھڑا ہو جائے, کوئی بھی کھڑا ہو جائے, وہ حلقہ اس ماں نے 50 سیکنڈ میں بچا لیا جس جاندار طریقے سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اس موقع پہ. کامران صاحب پہلے ہی کافی بدنام تھے, اس کے بعد مزید بدنام ہو گئے, کیوں کہ لوگوں نے اسے اسی طرح لیا کہ آپ نے جس طرح ہوئے تم اجنبی ایک فلم ریلیز کی تھی, یہ آپ نے دوسری فلم ریلیز کی ہے, پہلی پتہ نہیں اس میں سے آپ نے کچھ کمایا ہے نہیں کمایا, یا فلم بنانے والوں نے کچھ کمایا ہے نہیں کمایا, آپ کو تو آپ کی اجرت مل گئی ہوگی سارا معاملہ کرنے کی, لیکن یہاں سے بھی آپ کو کوئی خاص پاپولارٹی یا خاص ویورشپ تو نہیں ملی, نہ آپ کو کوئی نیک نامی ملی ہے, البتہ کوئی ادائیگی اگر کوئی طے ہوئی تھی اس فلم کی تو وہ آپ کو ضرور ہو گئی ہوگی. تو یہ اب اس طرف اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ صداقت عباسی صاحب کے ساتھ آج کیا ہوا. صداقت عباسی صاحب کو وہاں راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کے ایک جج ہیں ملک اعجاز آصف, آج ان کی عدالت سے انہیں 50,000 روپے کے مچلکوں پہ 10 دسمبر تک کی ضمانت دے دی گئی. اب ایک بندے کو ضمانت جب مل گئی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے, وہ غائب تھے, انہیں کسی نے اٹھا لیا تھا, کہاں رکھے گئے تھے کسی کو نہیں پتا, آج انہیں عدالت سے ضمانت مل گئی. اب ایک بندے کو ضمانت مل گئی تو اس بندے کو باہر آ جانا چاہیے, سامنے منظر عام پہ آ جانا چاہیے, وہ منظر عام پہ نہیں آئے ضمانت ملنے کے بعد بھی. انہیں ضمانت ملی, اس کے بعد پتا چلا کہ وہ ڈان ٹیلی ویژن کے اسلام آباد آفس گئے, انہیں ایک حاضر سروس آرمی کے کرنل صاحب اپنی ویگو ڈالے میں بٹھا کے وہاں لے کے گئے, وہاں ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا, اور وہاں ایک اور کامران شاہد صاحب جو آئی ایس پی آر کی گڈ بکس میں ہیں, ہمارے اینکر شاہزیب عادل شاہد, ان کے ساتھ ان کا انٹرویو ہوا, اور اس انٹرویو میں صداقت عباسی صاحب نے سے کوشچن کچھ اس طرح کے کیے گئے, اور صداقت عباسی صاحب کچھ اس طرح انہوں نے بیان جوابات دیے جس میں کہا جاتا ہے کہ بشرا بیگم کو انہیں عمران خان کے ساتھ ساتھ بشرا بیگم پہ انہوں نے کوئی نازیبہ ریمارکس پاس کیے, اور عمران خان کی گھر کی دیگر خواتین کے بارے میں کچھ ایسے فکرے انہوں نے ادا کر دیے کہ جب وہ ڈان کی مینجمنٹ تک وہ انٹرویو پہنچا تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں چلائیں گے, ہم نہیں چلا سکتے. اور آپ کو یاد ہوگا یہ ڈان وہی ہے جنہوں نے ڈان لیکس ہوئی تھی جن کی, اور ڈان لیکس ڈان نیوز پیپر میں چھپی تھی, اور ڈان ٹیلی ویژن جو ڈان نیوز ہے وہ بھی ڈان اخبار والوں کا ہے, تو انہوں نے کہا ہم یہ آن ایئر نہیں کریں گے. اس کے بعد انہیں ویگو ڈالے میں بٹھا کے نامعلوم مقام, نامعلوم افراد نامعلوم مقام پہ لے گئے انہیں. اب وہ کوئی اور بندہ ڈھونڈیں گے, کوئی اور فلم ساز, کوئی اور ایسا اس طرح کا جو اب ان کی یہ خدمات پیش کرے, اور پھر وہاں سے صداقت عباسی صاحب کا اعترافی بیان آئے گا کہ ہاں عمران خان اس میں ہمیں ہدایات دے رہے تھے یا جو بھی تھا. اسی طرح سنا ہے کہ فاروق حبیب کو بھی تقریباً نیکسٹ تیسری اسٹیپ میں فاروق حبیب صاحب کو بھی تیار رکھا ہوا ہے انہوں نے, لیکن اس میں دلچسپ کام یہ ہوا ہے کہ فردوس شمیم نقوی ایک کراچی کے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنا کیمرہ آن کر کے, انہوں نے اپنے طور پر بیان اپنا ریلیز کیا, انہوں نے قرآن مجید سامنے دکھایا, انہوں نے کہا یہ قرآن مجید ہے جس کو پورا پاکستان جانتا ہے, اور تقریباً جتنے مسلمان ہیں پاکستان میں رہنے والے سارے اس پہ یقین بلیو کرتے ہیں, میں اس پہ ہاتھ رکھ کے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. انہوں نے سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا میں 27 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, 27 سالوں میں آج تک عمران خان نے اس طرح کا ہمیں کوئی حکم نہیں دیا کہ سرکار پہ, سرکاری اداروں پہ, ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہو جائیں یا کسی سرکار کے کار سرکار میں کوئی مداخلت کریں, کوئی کسی غیر قانونی کام کا ہمیں آج تک انہوں نے نہیں دیا. میں یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, یہ میرا فائنل سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد مجھے کسی مجبوری کے تحت کہیں سے اٹھا لیا گیا, یا مجھے میری کوئی مجبوری نہیں ہے, نہ میں کرپٹ ہوں, نہ میں میرا کوئی اور ویڈیو ہے, نہ کوئی میری آڈیو ہے, نہ میرا کوئی ایسا سلسلہ ہے, لیکن اس کے باوجود مجبوریاں کچھ ایسی ہوتی ہیں زندگی میں بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتی, پتہ نہیں کل تک کوئی ایسی مجبوری میرے سامنے لا کے کھڑی کر دی جائے, اور پھر کوئی میرا بیان آپ کے سامنے آئے تو اس پہ یقین نہ کیجیے گا. میرا یہ بیان ہے جو ابھی میں آپ کو قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو دے رہا ہوں, یہ انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے. اب شاید پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگ یہ طریقہ ایجاد کریں گے, اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ لوگ اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ کسی نے میرا کوئی اکاؤنٹ بنا لیا ہے, اس اکاؤنٹ کو فیک سمجھا جائے, میرا یہی ایک اکاؤنٹ ہے, اور اس کے علاوہ اس اکاؤنٹ سے اگر کوئی بندہ کسی قسم کا آپ سے بات کرے تو اس پہ یقین نہ کریں. یہ ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا ہے, لیکن ہمارے نامعلوم افراد یا ہماری نامعلوم قوتیں یا ہمارے جو خفیہ ہاتھ ہیں یا ہمارے فرشتے ہیں جو خلائی مخلوق ہے ہماری, وہ جو کچھ کر رہے ہیں پتہ نہیں انہیں کہاں سے یہ آئیڈیاز آ رہے ہیں, कि आज ये कर दें, कल ये कर दें, परसों वो कर दें। फॉर एग्जाम्पल उस्मान डार है, उस्मान डार 9 मई को हुए, अभी 9 अक्टूबर को 6 महीने हो जाएंगे। अब 6 महीने बाद एक बंदा स्टेटमेंट दे रहा है, उस पर कौन यकीन करेगा कि 6 महीने तक ये सोचता रहा है कि मुझे ये हदायत किसने दी थी हमें, और वो टाइगर फोर्स के इंचार्ज भी थे। इसी बात पे जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सेनेटर हैं कामरान मुर्तजा, बहुत सीनियर लायर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि इसके अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हो उस्मान डार के स्टेटमेंट की, उस्मान डार के इंटरव्यू का, तो उसमें इमरान खान को कोई नुकसान नहीं होता, उस्मान डार के इंटरव्यू में कोई जान नहीं है। अब ये जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का सेनेटर कह रहा है, देखें ये आगे सिलसिला किस तरह बढ़ता है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है, अच्छी बात नहीं है, जो हुआ है सो हुआ है।
बहुत शुक्रिया। मगर एक बात मैं आपको, आपने एक बात कही और मेरी कोई जुर्रत और जसारत नहीं है कि मैं आपको करेक्ट कर सकूं, मगर यस आई वांट टू डिफेंड फ्यू पीपल एंड आई वांट टू डिफेंड माई सेल्फ एज वेल, कि आपने जब ये कहा कि कामरान शाहिद, यस कामरान शाहिद ने फिल्में बनाई, ISPR ने कॉन्ट्रैक्ट करोड़ों के हिसाब से उनको दिया, मगर ये लोग हैं जिन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, हालांकि वो झूठ की तरवीश कर रहे हैं, इसमें कतन कोई शक नहीं है, मगर बेशुमार सहाफ़ी इस वक्त पाकिस्तान में, जो आप अपने आप को कहते हैं, आप हामिद मीर साहब की बात कर लें, आज उनकी स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं, आप तलत हुसैन की बात कर लें, पढ़ते भी हैं, पढ़ाया भी है उन्होंने जर्नलिज्म को, मगर इस वक्त द मोस्ट अर्निंग्स जो हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट अर्निंग्स जर्नलिस्ट की हैं, पाकिस्तान का अलमिया यह है कि हम ये देखते हैं उसमें कोई सहाफी होना या ना होना नहीं है, द ब्यूटी ऑफ जिस सिस्टम में मैं और आप रहते हैं, एनीबडी कैन चेंज देयर प्रोफेशन एट एनी टाइम एनी टाइम एंड दे कैन बी सक्सेसफुल एनी, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का अलमिया यह है कि आम आदमी है तो वो सिस्टम को अब्यूज करता है, अगर वो सहाफी है तो वो सिस्टम को अब्यूज कर रहा है और मार पड़ रही है उसकी मुल्क में, जिसकी वजह से लोग सच को सच मानने पे और झूठ को झूठ मानने पे भी तैयार नहीं। हम अपनी जाती नफरतों और जाती पसंद और नापसंद को मयार बना के चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आई एम सो सॉरी फयाज भाई, मैं ओपनली आपको कहती हूँ, यू आर वेरी रेनाउंड जर्नलिस्ट एंड आई रिस्पेक्ट यू, मगर उसमें आप कनाडा में भी मैं देखती हूँ कि लोग एक ही सोटी के साथ, एक ही पैमाने के साथ गधे और घोड़े को नापते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं सर आपसे पाकिस्तान के हवाले से उनकी बहनों को बारे में कहा, और जो अलीमा हैं उन्होंने बल्कि ये लफ्ज़ कहा है कि भाई मैं तो अदालतों के बीच में भी पहुंची हूँ, और अगर आपने मुझे अरेस्ट करके ही अगर आपको सुकून आता तो आप मुझे अरेस्ट कर लें। और अलीमा साहिबा ने, इमरान खान की बहन और उनकी बेगम, अभी रिसेंटली इस जेल में भी जाके मिली हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने वेट बहुत लूज़ किया, हालांकि उनके लॉयर ने उनके लोअर क्लास की जेल के बारे में जिक्र किया है, वेयर एज इमरान खान ने कोई कंप्लेन नहीं की, ही डज नॉट वॉन्ट टू लीव कंट्री। उनको इजाजुल हक भी जाके मिले हैं और लोग भी मिले हैं कि आप पार्टी से छोड़ दें, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। मैं आपसे अलीमा खान साहिबा का बयान और उनको प्रेशराइज करने का, क्योंकि एक सूरत हाल हमारे सामने इमरान रियाज की सूरत में आई है कि इमरान खान इज नॉट द मैन जो गायब हुआ था, ही इज टोटली डिफरेंट मैन नाउ, और कहते हैं कि इमरान खान भी गो के वो मुल्क छोड़ने पे भी तैयार नहीं है और वो कंप्लेन भी नहीं इतनी कर रहे, मगर देखने वालों ने ये कहा है कि ही लॉस्ट हिज वेट, इसके बारे में कुछ फरमाएंगे आप?
बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं। अलीमा खान साहिबा का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने इस जब अभी स्टेटमेंट दी है उसमें दो बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट थी, एक तो उनकी इमरान खान की सेहत के हवाले से उन्होंने खदशा जाहिर किया, दूसरा उन्होंने सदर अलवी के बारे में कहा। आप मुझे याद कराइएगा सदर अलवी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आपके इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं कि उसकी इमरान खान की सेहत, बिल्कुल इमरान खान की सेहत के बारे में तशवीश है लोगों को, वो कला ने भी कहा है, अलीमा खान ने भी कहा है, बुशरा बेगम ने भी कहा है, बुशरा बेगम ने तो बाकायदा दरख्वास्त भी दी है कि मुझे उनकी सेहत के हवाले से, उनकी जिंदगी के हवाले से खतरात दरपेश हैं, और उन्हें घर का खाना और बाकी सहूलतें ये वो जो भी उन्होंने कहा है। अब इमरान खान का वजन बताते हैं, वकील भी बताते हैं, बहनें भी बताते हैं कम हो गया है, लेकिन इससे ज्यादा अलार्मिंग बात जो मेरे लिए और आम लोगों के, शायद उस पर ज्यादा बहस नहीं हुई, फैसल वावड़ा ने कहा है कि इमरान खान को दिल की तकलीफ पहले भी थी और दिल की तकलीफ हो सकती है। अब फैसल वावड़ा से कोई पूछे कि आप डॉक्टर कब से हुए, ये फैसल वावड़ा साहब वही हैं, ये बात ध्यान में रखें कि जब अभी अभी हुकूमत जब आई थी, ये चेंज हुई, केयर टेकर गवर्नमेंट आई, तो उसके कुछ दिन बाद इस्लामाबाद में जो डीजी काउंटर इंटेलिजेंस हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, उनके जो ऑफिस में के ब्लॉक की बैक पे जो ऑफिस है मार्गला पहाड़ियों के दरमियान में, एक खुफिया सा ऑफिस है हमारी आईएसआई का, वहाँ जब हमारे मीडिया मालकान को बुलाया गया था वहाँ, और उसकी हमने यहाँ रिपोर्ट भी किया था अपने प्रोग्राम में, वहाँ मीडिया मालकान को बुला के डीजी आईएसआई और डीजी काउंटर इंटेलिजेंस मेजर जनरल फैसल नसीर, इन दोनों ने मीडिया मालकान को जो कहा था कि एनफ इज एनफ, और अब हम इमरान खान की तस्वीर, उसका नाम और उसका जिक्र टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं देखना चाहते, अखबारात में उसका नाम नहीं पढ़ना चाहते, बड़ी सख्ती से उन्होंने बैन लगाया था। और ये कह के उन्होंने कहा था दैट्स इट, 8 मिनट की मीटिंग थी और 8 वहाँ अखबारात और मीडिया आउटलेट्स के मालकान थे, बाकी कुछ सीनियर बंदे थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। मालकान बुलाया तो मालकान को गया था, लेकिन वो सारे एकदम नहीं पहुंच सकते अचानक कॉल किया जाए, तो 8 पहुंचे थे, बाकी कोई उनके सीनियर रिप्रेजेंटेटिव थे, कोई कंपनी का प्रेसिडेंट था, कोई सीनियर एंकर पर्सन था। वहां फैसल वावड़ा साहब की एक गेस्ट अपीयरेंस हुई थी, गेस्ट एंट्री हुई थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये फैसल वावड़ा साहब हमारे आदमी हैं और ये जो कहें वो हमारी ही बात है। अब फैसल वावड़ा साहब अगर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि पाकिस्तानी मीडिया को थ्रेट करने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई, या थ्रेट ज्यादा सख्त लफ्ज होगा, तो आप ये कह लें कि उन्हें ब्रीफ या डी ब्रीफ करने के लिए, या उन्हें हदायत देने के लिए, या उन्हें डायरेक्शन देने के लिए, या वार्निंग इशू करने के लिए जिस मीटिंग में तलब किया गया था, वहां सिर्फ अखबारात और मीडिया चैनल्स के मालकान थे या उनके सीनियर रिप्रेजेंटेटिव थे, वहां फैसल वावड़ा का क्या काम था? ना वो वजीर हैं, ना उनकी कोई और इस हकूमत में, ना वो आर्मी के कोई जनरल ब्रिगेडियर हैं, ना उनकी कोई और हैसियत है। तो वहां उनकी अपीयरेंस सिर्फ इसलिए थी कि ये हमारे बंदे हैं। और आप देखेंगे जब से अभी ये काकड़ की हुकूमत आई है या इमरान खान की हुकूमत गई है, उस दिन से लेकर आज तक फैसल वावड़ा तमाम टेलीविजन चैनल्स पर बाकायदा कहा जाता है कि इसे बुलाया जाए, और फैसल वावड़ा जब भी जाते हैं वहां खबरें ब्रेक करते हैं, नई नई खबरें बताते हैं, और उनकी 80-90% उनकी जो पेशीन गोइयां नजूमी बने हुए हैं कि ये होगा आइंदा हफ्ते, उससे अगले हफ्ते ये होगा, सितंबर में ये होगा, अक्टूबर में ये होगा, दिसंबर में ये होगा, इलेक्शन कब होगा, कौन रिजाइन करेगा, कौन नहीं करेगा। आरिफ अलवी का उन्होंने कहा था कि आरिफ अलवी साहब जो है वो बैक स्टैपिंग कर चुके हैं, इमरान खान को दगा दे चुके हैं, उसके बाद पता चली, और अब हमें पता चला कि इमरान खान नाराज हैं उससे। तो ये फैसल वावड़ा पहले बता देते हैं। फैसल वावड़ा ने अगर कहा है कि इमरान खान के दिल की तकलीफ है, तो अब आप मिलाएं उसकी कड़ियां कि डॉक्टर रिजवान जो FIA में थे और तफ्तीश कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस शहबाज शरीफ के खिलाफ और शरीफ फैमिली के खिलाफ जो तफ्तीश कर रहे थे, ठीक ठाक यंग एनर्जेटिक CSP अफसर थे, कोई उन्हें मसला नहीं था, अचानक एक दिन उन्हें हार्ट की मसला हुआ, उन्हें दिल की तकलीफ हुई और फिर वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसी तरह जो मकसूद नायब कासिद, मैं उसे कहूंगा, लोग कुछ और कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, एक मकसूद इनका वर्कर था शरीफ फैमिली का, उस पर इल्जाम था कि उस पर उसने मनी लॉन्ड्रिंग के उसके अकाउंट यूज हुए थे और वो दुबई शिफ्ट हो गए थे और दुबई में ही रह रहे थे। अचानक एक दिन वो 40-45 ईयर्स का एक नौजवान आदमी था, उसको अचानक एक दिन दिल की तकलीफ हुई और उसे हार्ट अटैक हुआ और वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। इसके अलावा और भी 2-3 केसेज हैं। तो जो इनके साथ जिनके मसाइल होते हैं उनको कहा जाता है, बताया जाता है, ये इल्जाम लगाया जाता है कि उनके खाने में स्लो पॉइजनिंग इस तरह की जाती है कि कुछ अरसे बाद उस बंदे को दिल की तकलीफ होती है और फिर वो नहीं बच पाता। अब अगर इतने दिनों से इमरान खान को घर का खाना नहीं दिया जा रहा, और क्यों नहीं दिया जा रहा जबकि उनका इस्तेहकाक है, लेकिन नहीं दिया जा रहा, और अब अगर हमारी मौजूदा हुकूमत के या हमारे फरिश्तों के या खलाई मखलूक के तर्जमान फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को दिल की तकलीफ थी और दिल की तकलीफ हो सकती है, तो इसका मतलब है ये किधर डायरेक्शन जा रही है, किधर इशारा जा रहा है। फैसल वावड़ा साहब को क्योंकि कोई नहीं उन्हें पकड़ेगा, लेकिन हम मुतालबा तो कर सकते हैं कि उन्हें पकड़ के उनसे पूछा जाए कि भाई आप कहाँ कब से नजूमी हो गए, आप कब से डॉक्टर हो गए, और आपको ये कैसे पता चल गया कि इमरान खान को दिल की तकलीफ है, और इमरान खान का बाकायदा डिटेल चेकअप होना चाहिए और वहां से होना चाहिए जहां इमरान खान की बहनें और इमरान खान की अहलिया कहें। अब आ जाएं दूसरी बात जो अलीमा ने कहा था,
आपको यहां पे ये इमरान खान साहब के हवाले से ही निकला था, उनके डॉक्टर ने बल्कि ये बताया था कि कुछ भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलता स्लो पॉइजनिंग की, अब तो बहुत से एडवांस तरीका कर रहे हैं। अगर एक नॉर्मल इंसान की खुराक में इंसुलिन की शमूलियत ज्यादा कर दी जाए तो वो भी उसका हार्मोनल इम्बेलेंसमेंट होने के बाद, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी बॉडी हार्मोन्स पे चलती है जो रेगुलेट करती है, तो वो इन द लॉन्ग रन इट इफेक्ट्स अ हार्ट, उस बंदे के दिल को मुतासर करती है और वो हार्ट अटैक में रिजल्ट करता है।
बिल्कुल
जी।
तो दूसरी बात जो थी वो अलीमा ने कहा कि इमरान खान सख्त नाखुश हैं, नाला हैं सदर अलवी के रोल से, सदर अलवी साहब के किरदार से। आपको याद होगा बहुत दिनों पहले, शायद 4-5-6 हफ्ते हो गए हैं, हमने अपने प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में बताया था कि सदर अलवी साहब को जब आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई एक दिन वाने सदर में मिल के आए थे, जब उनका इलेक्शन की तारीख देने का मामला था और उससे पहले वो जो प्रोसीजर एक्ट पे साइन करने वाला जो सबका हुकूमत के बिल थे उन पे साइन करने और ना करने का, और वो बिल दबा के रखने और ना रखने का मामला था। उस वक्त जो पता चला था कि आरिफ अलवी साहब थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं या अपने मौकफ से हट गए हैं या इमरान खान की बैक स्टैबिंग कर रहे हैं या इमरान खान के पीछे से खामोशी से हट गए हैं, तो उस वक्त हमने खबर दी थी आपको कि DGISI और आर्मी चीफ इमरान खान इसको वाने सदर में सदर अलवी साहब से मिले हैं, और वहां मेरे सोर्सेज ये बताते थे, अगर कोई करेक्ट करना चाहे तो कर दे, मुझे ISPR वालों को मैं कहूंगा कि वो अगर चाहते हैं कि ऐसी बात नहीं थी वो वजाहत करें इसकी, लेकिन हमने इतने हफ्ते हो गए हमने ये बात की थी, कहीं से तरदीद नहीं आई। इन्होंने एक उन्हें शॉर्ट स्क्रीन शॉट्स दिखाए थे सदर अलवी साहब को, ऑफिशियली दिखाए गए थे कि जनाब ये आपके साहबजादे हैं, उनका नाम है अवाब अलवी। इन्होंने 9 मई के वाक़े के बाद हमारे रियासती इदारों के खिलाफ और स्पेशली हमारी आर्मी के खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट्स उन्हें ट्वीट्स किए हुए थे, उनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस थी, तो जनाब ये काफ़ी है हमारे लिए अवाब अलवी को पिक करने के लिए, और फिर अवाब अलवी से स्टेटमेंट लेके आरिफ अलवी साहब मोहतरम जनाब सदर पाकिस्तान आपके खिलाफ कार्रवाई का आगाज करने के लिए हमें ये स्क्रीन शॉट्स काफ़ी हैं। और वो दिन और आज का दिन, उसके बाद फिर सदर अलवी साहब बैकफुट पे ही हैं। अगर आज इमरान खान उन पर नाराज हैं तो वो वजह यही है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी इस बात पे किसी ने उस वक्त और भी नहीं किया, और PTI वाले भी शायद अब तो तितर बितर हो चुके हैं, एक रऊफ हसन साहब हैं और शायद उनके साथ 2-4 अरशद दाद वगैरह 4-6 बंदे होंगे, और उनका भी कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं, सेटअप नहीं जहां वो इन चीज़ों पर गौर करें, बैठें, बात करें और इश्यू उठाएं, क्योंकि उनको तो अदालतों से ही फुर्सत नहीं, उनकी 150-180 केसेस तो इमरान खान के खिलाफ हैं, फिर बाकी जो उनके लोग हैं PTI के, हर बंदा किसी न किसी केस में किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। तो अलवी साहब पे बाकायदा अगर देखा जाए तो अलवी साहब को, अवाब अलवी जो उनके साहबजादे हैं, उनके स्क्रीन शॉट्स की वजह से अलवी साहब को ठंडा कर लिया गया था और उन्हें अपनी लाइन पे, अपनी डायरेक्शन पे लगा दिया गया था। वो वाकई किसी और की डायरेक्शन पे चल रहे हैं, वो PTI के साथ जो उनका एक 1996 से उनका जो ताल्लुक था वो ताल्लुक खत्म नहीं हुआ तो कमजोर जरूर हो गया है। अलवी साहब को भी गौर करना चाहिए कि ये दिन सदारत के ईवान सदर में वो कब तक रहेंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इलेक्शन हो जाने हैं, नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आ जाना है, आपको फिर घर जाना ही पड़ेगा। जब आप घर जाएंगे तो फिर आपके साथ वही सलूक होगा जो आप गुज़श्ता कल शहबाज शरीफ के साथ लाहौर में हुआ है या उससे 2 दिन पहले मरियम नवाज के साथ हुआ है। तो आरिफ अलवी साहब को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनका वो महबूब लीडर जिसने उन्हें पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने एक बंदे को सदर पाकिस्तान बनाना था तो उन्हें उनके पास बहुत ऑफर्स थी KPK के किसी बंदे को बना दें, पंजाब के किसी सीनियर PTI के लीडर को बना दें, बलूचिस्तान के किसी PTI के बंदे को बना दें या सिंध के किसी और को बना दें, लेकिन उन्होंने आरिफ अलवी साहब को कहा। और इमरान खान ने एक स्टेटमेंट में यह भी कहा था कि आरिफ अलवी आखिरी बंदा होगा जो मेरे खिलाफ जाएगा। अब अगर आरिफ अलवी साहब को भी उन्होंने जो कायल करने वाले हैं या टेम करने वाले हैं, अगर उन्होंने टेम कर लिया है तो उसके बाद फिर उन्होंने उन्हें लगा कि हाँ वाकई इमरान खान का आखिरी बंदा भी हमने तोड़ दिया है, तो ये दरमियान में फरूख हबीब, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार वगैरह वगैरह जो हैं इनको भी क्लियर करें और इमरान खान को लिटरली तन तनहा कर दें। और मैं एक मेरा अपना तजिया है कि इमरान खान के साथ अगर एक बंदा भी ना रहे, इसके बावजूद अगर इमरान खान इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन से चंद दिन पहले एक सादा कागज पे अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट बना के साइन करके पब्लिक कर दे कि ये मेरे कैंडिडेट्स हैं, तो यकीन माने वो सादा कागज पे इमरान खान के साइनों के साथ लिखे हुए जो कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी वो फिर भी जीत जाएंगे। जी
बहुत शुक्रिया फैज़ भाई, अगर आप अपने तई जो चीज़ भी कवर करना चाहें, चीज़ें तो बहुत सारी हैं जिनको मैं खुद भी एड्रेस करना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं आजकल, कल जो चमन के बॉर्डर पे जो वाकया हुआ है, काजी फैज़ ईसा साहब का मामला बड़ा कि फैज़ाबाद धरने को जिस हिसाब से वो खोले और किसी मुबालगे की जगह अब नहीं रही क्योंकि उन्होंने ओपन कैमरा इंक्वायरी कर दी, इसमें तो बड़े बड़ों के नाम आएंगे, बड़े बड़ों के नाम आएंगे, तो क्विक उसका कंक्लूजन दें
कि मैच में जब कहा जाता है ना कि मैच दिलचस्प उसमें दाखिल हो, मरहले में दाखिल हो चुका है, तो मैच काफी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट वाला भी और ये इलेक्शन कमीशन वाला भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं उनको, उनके लिए भी फॉरन ऑफिस को हदायत जारी कर दी है कि आप जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आपको अप्रोच कर रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से वीजा के उसूल के लिए, आप उन्हें फैसिलिटेट करें। मैं एक और जो बात करना चाहता था, आप जब से मैंने आपके पास यहाँ तकरीबन साल होने वाला है काम शुरू किया, आप पहले दिन से मुझे कह रही थी कि फयाज भाई आप अपना YouTube क्यों नहीं शुरू करते। मैं YouTube इसलिए नहीं शुरू करता था कि मैं मेक श्योर करना चाहता था कि हाँ वाकई लोग मुझे आपको और हमें सुनना चाहते हैं। एक और इसमें थोड़ा सा मैं वाक्य भी आपको बता दूं कि मेरी बेटी अगले दिन कोई बात हो रही थी तो मैं उन्हें कोई बात बता रहा था, तो उसने कहा कि बाबा आपके पास इतनी बातें होती हैं बताने वाली, इतने वाकयात, इतनी इंसिडेंट्स, इतनी आपके पास हिस्ट्री है, आप क्यों नहीं बताते। मैंने कहा बेटा मैं इसलिए नहीं बताता, आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप यू आर विलिंग टू लिसन टू मी। अब आप सुन रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं महसूस करूंगा कि आप मुझे नहीं सुनना चाहते मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। इसी तरह मैं अपनी ऑडियंस के हवाले से भी मैं यही चाहता था कि हाँ मुझे पता चल जाए कि क्या वाकई लोग मुझे सुनना चाहते हैं, क्या वाकई लोगों को लगता है कि मेरे अल्फाज में, मेरी बातों में, मेरे ख्यालात में कुछ ऐसी बात है जो उनके दिमाग में, उनके दिल में भी मौजूद है। अब आपने देखा हम जो ही इसे सोशल मीडिया पे कहीं आम करते हैं, और हम ज्यादा नहीं करते, सिर्फ यूट्यूब पे करते हैं, लेकिन जो ही मेरा और आपका प्रोग्राम ऑन एयर जाता है तो 8-10 घंटों में तकरीबन 30-40 हज़ार लोग उसे व्यूज दे चुके होते हैं, कमेंट्स लोगों के आ चुके होते हैं। तो मैं समझता हूं कि हाँ वाकई लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी जर्नलिस्टों का पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो कम अज कम हमारे बारे में आप ये नहीं कह सकते कि हमने ठेका उठा लिया है पीटीआई का, या हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है पीपल्स पार्टी का, या हमारा कोई मुआहदा तय पा गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या किसी और पार्टी से। हमारा किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारा सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारी अवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ है, उसके लिए हम बोलेंगे करेंगे। तो अब मैं आज बताना चाहता हूँ अपने लोगों को कि यूट्यूब मैं अपना शुरू करने लगा हूँ। अकाउंट तो बड़े अच्छे से बनाया हुआ था फयाज वालाना ऑफिशियल, एक वो भी है और एक 12वां खिलाड़ी विद फयाज वालाना। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ ई आवाज टेलीविजन पे मेरा प्रोग्राम होता है मंडे एवरी ट्यूजडे इवनिंग और एवरी थर्सडे इवनिंग, वेंसडे को मैं अपना प्रोग्राम करता हूँ ई आवाज पे। लेकिन इसके बावजूद ड्यूरिंग द वीक्स कई ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं कि जिन पे फौरी तौर पर 5-10 मिनट की वीडियो करने की जरूरत महसूस होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि फयाज वालाना ऑफिशियल पे मैं आपको आपके साथ रबते में रहूं, और जो लोग फयाज वालाना ऑफिशियल को मुझे ऑफिशियल करने से पहले अगर वहां जाके उसे लाइक या सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनकी मेहरबानी, क्योंकि मुझे हौसला होगा कि हाँ वाकई आप मुझे सुनना चाहते हैं और आप वो पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं जो आपका आप चाहते हैं, जो एक अवाम का, एक पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू है। एक और बात करनी थी कि यहाँ कनाडा में आपको पता है पीआईए की फ्लाइटें तो दुबई में भी रोक ली गई थी, सऊदी अरब में भी रोक ली गई थी, कुछ अर्सा पहले मलेशिया में भी रोक ली गई थी नॉन पेमेंट की वजह से। तो हमारी एक फ्लाइट थी पिछले हफ्ते PK 790 यहाँ कनाडा में, उसे रोक लिया गया। $2 लाख हमने हैंडलिंग के चार्जेस और फ्यूल के चार्जेस देने थे, ग्राउंड हैंडलिंग और फ्यूल के चार्जेस, वो $2 लाख अदा किए गए। तो उसके बाद यहाँ से फ्लाइट पर रवाना हुई और अब उसी मामूल के मुताबिक हमारी फ्लाइट्स आना शुरू हो गई हैं। तो पीआईए के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। हमारे वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद साहब अगर किसी और के एजेंडे पे और अपने सबका जो उनके हैं सरप्रस्त मुस्लिम लीग नून वाले मियां नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ अगर उनकी किसी हदायत पर अमल करने नहीं आए तो पीआईए के मामलात को देखें और संजीदगी से देखें, लेकिन इसे औने पौने दामों किसी अपने किसी पसंद के बंदे को बेचने की कोशिश ना करें। एक और जरूरी बात कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो लाहौर गए वो बेसिकली तैयारी तो इमरान खान के नवाज शरीफ के आने के कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने गलती भी की और एक्सपोज भी हुए कि ये वो शरीफ खानदान है। और वैसे भी हमारे पाकिस्तान में आपको पता है जितनी एलीट क्लास है ये बॉडीगार्ड के अलावा और पुलिस के प्रोटोकॉल के अलावा कहीं ये मूव नहीं करते, और वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होने की वजह से उन्हें प्रोटोकॉल डिजर्व भी करते हैं, उन्हें मिलता भी है। और पंजाब में तो मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट है, वो कैसे उन्हें प्रोटोकॉल नहीं देंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने क्यों अपने बॉडीगार्ड्स और प्रोटोकॉल्स के बगैर एक ड्राइवर के साथ वो लाहौर में उस जगह पहुंच गए जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और वहां जब पहुंचे और वहां लोगों ने जो उनके साथ सलूक किया, और आज आपको पता है आजकल लोग वीडियो ऑन करके तो उसके बाद सलूक फरमाना शुरू करते हैं, लोगों ने वीडियोज ऑन कर ली और शहबाज शरीफ साहब के साथ वहां जो सलूक हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी लीडर के साथ। लेकिन मुझे ये भी शक है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने शायद जानबूझ के मियां नवाज शरीफ साहब को डराने के लिए ये काम किया हो और फिर उस वीडियो को वायरल किया। अब मियां नवाज शरीफ साहब वहां से फिर बैठ के सोचेंगे कि अगर लाहौर पहुंचने के बाद मेरे साथ ये हो गया जो शहबाज शरीफ साहब के साथ पब्लिक ने किया है तो मैं मुझे तो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दो दिन पहले नवाज शरीफ मरियम नवाज ने जो कॉर्नर मीटिंग की थी उसमें जो हाजिरी थी उसमें अगर लाहौर में हमजा शहबाज लाहौर में बैठे हुए थे और बाकी जो हमजा शहबाज ग्रुप के लोग थे वो लाहौर में एमपीए के कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग्स कर रहे थे, अगर वो चाहते तो वो जलसी ना होती, वो जलसा हो जाता वाकई मरियम नवाज का। लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये जो नवाज शरीफ वर्सेस शहबाज शरीफ उनके घर के अंदर जो लड़ाई है उस लड़ाई में शायद मियां शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज ये चाहते ही नहीं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए। अगर वो डराना चाहते हैं या वो उनकी किसी की हदायत पर उन्हें डरा रहे हैं तो शायद ये भी उनकी एक कोशिश हो सकती है सिर्फ मियां नवाज शरीफ तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए कि हम पब्लिक में आप इतने पॉपुलर नहीं रहे, भाईजान आप वहां लंदन में ही रहे, आप पाकिस्तान तशरीफ ना लाएं, देखें क्या होता है।
बहुत शुक्रिया। और अताउल्लाह तारड़ साहब इंग्लैंड में थे, जो कितनी गंदी गाली गलोच हुई वो भी आपके नोटिस में है। इसका मकसद है कि वक्त के साथ अब किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रहेगी, और इस वक्त जो हक में वक्त है उनको इस बात का अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया फ़ियाज़ बिलाना साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। प्रोग्राम को इसी तरह सुनते रहिएगा, कहीं अगर आपको स्टैटिक हो, और ज़रूर कहीं ना कहीं आपको स्टैटिक मिल भी सकता है, हमारा जो नंबर जिस पे आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं 6478724900 8724900 872-4900 एरिया कोड 647। सुनते रहिए प्रोग्राम को, हमारे चंदे स्पॉन्सर्स वेलकम बैक।
A child's smile can make a big difference when it comes to their health. If you have kids under 12, earn less than $90,000 a year, and do not have private dental insurance, you may be eligible for the new Canada Dental Benefit. You could get a direct payment of up to $650 per child for dental care. Now that's something to smile about. To learn more, visit canada.ca/dental. A message from the Government of Canada.
ब्रैम्पटन ऑन स्टेज 12 से 18 अक्टूबर तक द रोज ब्रैम्पटन पर अहद रजानीर को हैमलेट के किरदार में देखकर खुश और वेलकम करते हैं। हैमलेट जो आजकल के दौर के लिए गजबनाक तेज रफ्तार इंतकाम और दागदार मोहब्बत की कहानी है, क्या आप हमारे डेनमार्क के शहजादे के साथ बाइज्जत खुशहाली पागलपन के दरमियान लाइन पर चलने की हिम्मत करते हैं? ये तब्दीली सिर्फ सच्चा सानिया ही ला सकता है। देखना मत भूलिएगा हैमलेट 12 से 18 अक्टूबर तक द रोज ब्रैम्पटन में। सेल टिकट्स खरीदने के लिए विजिट करें brampton-on-stage.ca।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
ABS Friends Entertainment, Basba Empire, Mosek and AAA Production present The Legend of the Legends, Gurdas Maan. Saturday 28th October, First Ontario Center. Tickets are available on ticketmaster.ca. For sponsorship and VVIP tickets, contact
Sunny Bajwa 416-562-1123, Tony Johal 416-818-2020.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL बिकॉज वी केयर।
जी सामने नाजरीन वेलकम बैक अगेन, एंड 5:38 और अब 35 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं, और क्विकली हम आपको लिए चलेंगे आज की न्यूज की जानेब। न्यूज के फौरी बाद फिर कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम और क्रिकेट सेगमेंट को हम आपके लिए पेश करेंगे। आप देखता हूं सुनना नहीं भूलिएगा, आज बहुत अच्छा इंटरव्यू है वसीम बारी साहब से। अपनी जिंदगी में मैंने अगर किसी विकेट कीपर को देखा है तो वो है वसीम बारी। आई डोंट थिंक आई सीन एनी बारी बेटर विकेट कीपर देन वसीम बारी, एंड शाहजेब मलिक जी उनसे बात करेंगी। फिलहाल खबरों की तरफ ही चलता हूं मैं और शाजिया मलिक जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है?
अल्हम्दुलिल्लाह।
असल में मयूर भाई जो है ना वो मुझे आजकल डॉक्टर उन्होंने कहना छोड़ दिया है, ये मुझे इसका बड़ा अफसोस है। वो जो पहले कहते थे ना डॉक्टर शाजिया मलिक आ रहे हैं तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब वो मुझे डॉक्टर मानना ही चाहते हैं। अब मान नहीं रहे तो अब क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं नहीं तुम सिर्फ सीधी सीधी खबरें जो हैं वो पढ़ो। अच्छा जी ठीक है, हम आपको जो अब 3-4 दिन से बता रहे हैं कि भाई इट्स गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर न्यूज़, हम न्यूज़ कुछ करेंगे और उसके बाद हम किसी न किसी एक्सपर्ट पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वर्ल्ड कप। आपको पता ही है कि वर्ल्ड कप बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट है और बहुत अरसे के बाद आता है, तो हम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उस दिन की जो गेम होएगी उसके ऊपर हम बात करेंगे, विच इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द न्यूज। आपको पता ही है कि मेरी न्यूज हमेशा स्पोर्ट्स के साथ एंड होती है, तो आप यानी ये सोच सकते हैं कि हमारा जो अब स्पोर्ट्स का सेगमेंट है उसमें बजाय इसके कि दूसरी बहुत सारी स्पोर्ट्स जिनके बारे में हम बात करते थे, हम अब उसको क्रिकेट स्पेसिफिक रखेंगे और जो भी उस दिन का मैच होएगा उसके ऊपर कोई ना कोई हमारा एक्सपर्ट आके हमारे साथ बात करेगा। तो हम इस तरह से जो है अब न्यूज को लेकर चला करेंगे। तो यानी न्यूज एंड देन द जो आखिरी सेगमेंट होता है हमारा जो स्पोर्ट्स का, उसको अब एक्सटेंडेड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है उस तक हम करेंगे बनाएंगे। तो उस तरह से हम प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। मज भाई वो एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब आई ना एक मल्टीनेशनल में, तो वह वहां पे उसको मल्टीनेशनल थी चूंकि, तो उनको मालकों ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये सिक्योरिटी गार्ड की तुम जॉब है, तुम्हें अंग्रेजी आती है? कहता है क्यों जी, मैं तो पाकिस्तान में जॉब कर रहा हूं, चोरों ने इंग्लैंड से आना तो मुझे अंग्रेजी आना क्यों जरूरी है जी? देख ले भाई, देख ले।
दैट्स अ
गुड क्वेश्चन। वो कहते हैं जॉब तो मुझे पाकिस्तान में करना है, तो आप मुझे कह रहे हो अंग्रेजी आपको आना चाहिए, तो क्यों, क्या बात है? अंग्रेजी बोलने वाले चोर आएंगे यहाँ,
पढ़े लिखे चोरी करने,
पढ़े लिखे लोग आएंगे चोरी करने इस तरह के ऐसे। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नान कबोब, और हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं हमारे जो क्रिकेट के स्पॉन्सर्स हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप के यानी कि जो स्पॉन्सर्स हैं, एक तो इकराज आपको पता ही है कि हलाल मॉर्गेजेस देते हैं, और इसके अलावा जो है हमारे साथ आपको पता ही है कि हम सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के भी आपको पैगाम देते रहते हैं, और उन्होंने भी हमें जो है एक जो है सोचा कि हम जुड़ सकते हैं हमारे साथ वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है जी। अच्छा जनाब, हमारी जो न्यूज है वो हम शुरू करते हैं। नैनोज रिसर्च एक आई है और इसमें उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि भाई अब इस वक्त अगर कनाडा में इलेक्शंस करवाए जाएं तो कौन ज्यादा पॉपुलर रहेगा। ये जो है वो कहते हैं जी कि इलेक्शंस अगर आज कराए जाएं तो कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो काफी सीट्स ले सकती है हाउस ऑफ कॉमन्स में, और वो बल्कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना सकती है, उसको माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, यानी उसको किसी के साथ अलायंस करने की जरूरत नहीं रहेगी। कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसके पास इस वक्त 38% सपोर्ट है एज ऑफ वो कहते हैं September 29, और ये जो हैं बहुत ऊपर चले गए हैं, 5.5 percentage points जो हैं 4 वीक्स पहले से ये ऊपर चले गए हैं। एनडीपी जो है उसके पास भी अब 0.5 percentage points मोर आए हैं, तो 21% पे ये हैं। ब्लॉक क्यूबेकवा जो है वो बल्कि ड्रॉप किए हैं 1 percentage point से, तो अब वो 6.2% पे हैं। ग्रीन्स जो हैं उनकी सपोर्ट बिल्कुल अनचेंज्ड है 5.7% पे। जो पीपल्स पार्टी है वो भी नीचे आई है 0.5 percentage point से 2%, और इसके अलावा जो है 32% अब लोग कैनेडा के अंदर प्रेफर करते हैं कि पीएर पॉलिवे जो है उनके प्राइम मिनिस्टर हुए, और ये भी 5 percentage points ऊपर गए हैं 4 वीक्स पहले से। 23% ने प्रेफर किया ट्रूडो साहब को ही एज प्रेसिडेंट, और ये बल्कि नीचे आए हैं 4.7 percentage point से। 15.6% ने कहा कि हम जगमीत सिंह को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। ये जो पोल था ये रैंडम फोन इंटरव्यूज जो थे उसके थ्रू किया गया था ऑफ 1127 कैनेडियंस बिटवीन द एजेस ऑफ 18 एंड ओल्डर।
अभी ये इनकम्बेंट्स को जो है वो हराना बड़ा मुश्किल होता है, एंड यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ मंथ्स टू गो, एंड उसमें लास्ट मिनट में ये लोग जो है एकदम गुडीज देके लोगों का दिल जीतते हैं।
नहीं, तो वो गुडीज दिए थे उसने कैथलीन वेन ने भी, लेकिन किसी ने कैथलीन वेन को फिर ऑन्टारियो के अंदर,
दैट वाज अ डिफरेंट केस ऑल्टुगेदर।
डकफोर्ड जो है, हाँ ठीक है, वो जो था वो प्रोविंस का था और ये फेडरल की बात हम कर रहे हैं, बट स्टिल आई मीन स्टिल मुझे तो आज भी यही लगता है कि अब पीएफ पॉलिवर जीतेगा। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर बनेगा वही,
तो
वैसे
कर रही है, जीतेगा
हाँ,
भी जीतेगा
हाँ, बस मजीद भाई मैं उस गाने से बहुत ज्यादा जो है ना वो आप कहते हैं ना भावुक हो गई हूँ, यानी कि मैं बहुत ज्यादा उससे इम्प्रेस हो गई हूँ जी। तो वो वैसे लोग कहते हैं भावुक नहीं होना आपने, यानी कि ज्यादा इंप्रेस नहीं होना किसी, लेकर हो गई हूं मैं। अच्छा जनाब, कनाडा के अंदर आज बहुत बड़ी ये जो न्यूज है, और अगर ये इंप्लीमेंट हो गई तो लोगों की जिंदगी काफी आसान हो सकती है। हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं फिलीप शैंपेन साहब, उन्होंने भी नाम देखो मजद भाई, नाम लेते ही नशा आ जाता है, फिलीप और शैंपेन
है
जी। तो फिलीप शैंपेन जो है उन्होंने आज कहा है जी कि हम एक्शन लेंगे अब, और हम मेजर्स ले रहे हैं कि जो ग्रोसरी की प्राइसेस हैं उनको बिल्कुल फ्रीज किया जाए। आज वो एक अपडेट दे रहे थे जो कि उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं इनिशियली, यानी कि उनके साथ जो कमिटमेंट्स की हैं इनिशियली लॉबलॉज, मेट्रो, एम्पायर, वॉलमार्ट और कॉस्को ने, और वो कहते हैं जी कि ये जो पांच बड़े रिटेलर्स हैं इन्होंने कहा है कि हम डिफरेंट एक्शंस लेंगे अपने स्टोर्स के ऊपर ताकि प्राइसेस को नीचे रखा जाए, यानी कि ग्रोसरी प्राइसेस को नीचे रखा जा सके। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव किस्म के जो है डिस्काउंट्स अब आप कनेडियंस को देखने में मिलेंगे, और वो कहते हैं जी कि हमने इनके साथ जो बात की है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट परचेज होती है किसी भी हाउस होल्ड की, तो एक हमने इसके लिए ग्रोसरी टास्क फोर्स भी बनाई है इन द ऑफिस ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ताकि वो मंथली तौर पे मॉनिटर कर सकें कि ये जो ग्रोसर्स की कमिटमेंट है ये ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, और ये करेंगे तो बाकी लोग भी इसको फॉलो करेंगे। इंटेग्रिटी मिनिस्टर कमिश्नर जो हैं जी, उन्होंने जैसे कि अभी थोड़ी सी बात आरफा बाजी ने भी की है कि टोरंटो के मेयर जो थे फॉर्मर जॉन टोरी, उनके बारे में उन्होंने कहा कि इन्होंने वायलेट किया था कोड ऑफ कंडक्ट जब इन्होंने रिलेशनशिप बनाई थी अपने स्टाफर के साथ। लेकिन इसके उनके ऊपर जो बड़ा एलिगेशन है वो ये है कि जिस वक्त इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट किया तो उस वक्त भी ये काउंसिल के पास गए और फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो इनको वोट्स चाहिए थे वो इन्होंने लिए। तो वो कहते हैं जी कि वो बायस्ड हो सकते हैं इसलिए भी कि जिस लड़की के साथ इनका अफेयर था वो पार्ट ऑफ दैट कंपनी थी जो कि बिड कर रही थी फीफा के लिए। तो ये अब बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ गया है। ये 122 पेज की जो रिपोर्ट आई है इंटेग्रिटी कमिश्नर जॉनसन बैटी की, उसमें वो कह रहे हैं जी कि ये इन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर मेंबर स्टाफ, और कंसेंसुअल तो इनका रिलेशनशिप था लेकिन उस स्टाफर का ताल्लुक जो था वैसे तो उसने छोड़ दिया था सिटी हॉल, लेकिन वो उसने काम करना शुरू कर दिया था उस कंपनी के लिए जो ऑर्गेनाइज कर रही थी ये सारा कुछ। तो इसलिए ये अब इनके ऊपर बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो आ गए हैं। पुलिस कहती है जी उसने एक ट्रायो को यहां पे पकड़ा है जिसने के 175,000 वर्थ ऑफ मर्चेंडाइज जो था वो चोरी किया था, जिसमें के परफ्यूम्स थे, क्लोन्स थे, क्लोदिंग थी ऑन्टेरियो के अंदर। इनके नाम जो पुलिस ने और तस्वीरें जो शाया की हैं वो हैं आयोनेट बेकन 30 ईयर्स इनकी एज है, बियांका बेस्करेसिया 24 ईयर्स इनकी एज है, डिनीस एंड्रिया डमीट्राश्री 32 ईयर्स इनकी एज है, और उन्होंने कहा जी के इनको चार्ज किया है 3 अकाउंट्स ऑफ थेफ्ट्स पे और ट्रैफिकिंग इन प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय क्राइम, और ये जो डिफरेंट इनकी लोकेशन थी उनसे ये सारी जो हमने सर्च वारंट्स एग्जीक्यूट किए थे उस सिलसिले में फिर ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आज सामने आई है। अच्छा जी, अब जब से तो ये हमारे जो लिबरल एमपी थे और स्पीकर थे हाउस के एंथनी रोटा, उन्होंने जिस वक्त से रिजाइन किया अपनी पोजीशन से, क्योंकि उन्होंने जब ज़ेलेंस्की साहब यहां पे थे तो एक नाट्सी जर्मनी के जमाने का एक जो वेटरन बुलाया था और फिर उसको बड़ा इन्होंने अपलॉड किया था, वो चीज जो है अब चलती जा रही है। आज जो हमारी कनाडा की गवर्नर जनरल है उनके ऑफिस ने बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने कनेडियंस ने कनाडा का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था वो हमने एक और नाट्सी को दिया था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिसने के पार्टिसिपेट किया था, पीटर सवेन इनका नाम है, फॉर्मर चांसलर ऑफ अल्बर्टा यूनिवर्सिटी हैं और लीडर हैं ऑफ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फ्री यूक्रेनियंस। तो इनको दिया गया था ऑर्डर ऑफ कनाडा इन जून 1987 और इन्होंने भी फाइट किया था वाफन एसएस ग्लेशिया डिवीजन के अंदर, जो कि एक वॉलंटरी डिवीजन थी जिसको कि क्रिएट किया था नाट्सीज ने टू फाइट अगेंस्ट सोवियत यूनियन। तो इसके ऊपर आज उन्होंने सॉरी कहा है और उन्होंने कहा जी कि हमको अफसोस है कि हमने इनको अपना कनाडा का इतना बड़ा अवार्ड दिया।
And this part of the news is brought to you by Next to Wireless, electronic cell phones, long distance calls, iske saath saath dash cam and software update, urgent phone repairs ho sakti hai, laptops and GPS mil sakta hai aapko yahan se, 7171 Gorway Drive, unit number 2 in Mississauga, Next to Wireless, 647-272-0020 inka phone number hai. 3525 Platinum Drive Mississauga में और 15 Montpelier Street Brampton में Grill and Chick, Best Grill Chicken in Town, www.grillandchick.com पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 9054560500 इनका फोन नंबर है। हेयर मैक्स के शिराज साहब कहते हैं कि अगर आपने आपके घर में किसी की भी सुनने में कमी हो गई हो, सुनाई कम देता हो, तो साहब आप एक दफा विजिट करें, हेयर मैक्स पर और आपका साजो आवाज का हवाला देने पर आपकी जो हेयरिंग टेस्ट है वो एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा। शिराज साहब का फोन नंबर है 416-792-8792।
जी यूके के अंदर आज लोग जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं उनसे काफी ज्यादा नाराज हैं क्योंकि उन्होंने आज अनाउंसमेंट की है कि ये जो बड़ा इनका लॉन्ग अवेटेड हाई स्पीड रेल नेटवर्क था HS2 उसको इन्होंने कहा है जी कि हम इसको अब जो है कैंसिल कर रहे हैं और ये बड़ा ही इसका लोगों को इंतजार था क्योंकि इसने कनेक्ट करना था लंदन को मैनचेस्टर से और तकरीबन 530 किलोमीटर्स की ये जो थी हाई स्पीड रेल आनी थी जिसमें बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होनी थी, बहुत सारे लोगों के जो हैं चांसेस थे कि उनको जो है अच्छी पोजीशंस मिल सकें क्योंकि जाहिर है कि पूरी जब एक रेल की पटरी आती है तो स्टेशन आते हैं तो उसमें बहुत सारा स्टाफ चाहिए होता है। ये जो अपनी लॉन्ग स्पीच कर रहे थे कंजर्वेटिव पार्टी के कन्वेंशन से एट द एंड ऑफ द ईयर मैनचेस्टर में तो इन्होंने कहा जी कि ये जो है ये बिल्कुल ठीक डिसीजन नहीं था क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इनको इस बात पर क्रिटिसिज्म ना सिर्फ लेबर पार्टी जिसने कि ये लॉन्च किया था प्रोजेक्ट बल्कि जो इनकी अपनी खुद की पार्टी है उसने भी बेइंतहा एतराज किया है। उन्होंने कहा जी कि मैं जो है अब उनको खुश करने के लिए उन्होंने कहा जी अनवेल कर रहा हूं नेटवर्क नॉर्थ और ये जो $43.6 बिलियन थे जो कि इसके ऊपर यूज करने थे रेल के ऊपर अब वो मैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे रोड्स रेल्स और बसेस के ऊपर स्पेंड करूंगा। ये जो थी HS2 रेल जो थी इसका फर्स्ट प्रपोजल जो था 2009 में दिया गया था और इसको कहा गया था कि ये जी इंग्लैंड के नॉर्थ और साउथ को बड़ी क्विकली कनेक्ट करेगा, इसके अंदर जो है सोशल रीजनरेशन आएगी, फ्री क्राउड और जो मोटरवेज हैं वो फ्री किए जाएंगे क्राउड से क्योंकि बेतहाशा जो है हमारी मोटरवेज जो है क्राउडेड है, गाड़ी जो चल रही हैं उसकी वजह से जो कार मिशन पैदा हो रही हैं उसको कट किया जाएगा और ये जो था इसको कहा जा रहा था कि दिस वॉज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन यूरोप। लेकिन 2008 के जो फाइनेंशियल क्रंच आया और फिर ब्रेक्सिट जो इन्होंने किया उस पर ऋषि सुनक साहब का कहना था और ये जो फिर उसके बाद COVID-19 आ गया था कि इसकी कॉस्ट अब $43.6 बिलियन से $120 बिलियन चली गई है और ये बनेगा भी नहीं अब जो कि बनना था 2016 में 2040 तक। तो एज अ रिजल्ट इसमें जो है बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही थी और कॉस्ट हाई हो गई थी तो एज अ रिजल्ट हम इसको जो है अब कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आज इनके खिलाफ जी क्रिटिसिज्म आई है। रशिया जो है जी वो शायद अपने सिविलियन शिप्स यूज कर सकता है ब्लैक सी के अंदर जिसमें कि वो लगा सकता है सी माइंस जबकि यूक्रेनियन शिप्स जो हैं ग्रेन लेके जा रहे होंगे। इस सब चीज की जो इतला है वो इंग्लैंड की जो इंटेलिजेंस है उसने आज दी है, उसने वार्न किया है, उसने कहा कि ये जो 12 कार्गो वेसल्स जो हैं जो कि अब एंटर होने वाले हैं ब्लैक सी कॉरिडोर के शिपिंग कॉरिडोर में तो यूक्रेन के पोर्ट्स की तरफ जाने के लिए तो ये बहुत ज्यादा मैरीटाइम ट्रैफिक को इंक्रीज जो था वो कर सकते थे और बड़ी तेजी से ग्रेन जा सकता था। लेकिन ये डिफायंस है रशिया ने जो ब्लॉकेट किया हुआ है सी पोर्ट्स का उसकी तो उसकी वजह से ये शिप्स को उड़ा सकता है। यूके के जो इंग्लैंड के जो फॉरन ऑफिस है उसने कहा जी कि हमारे पास जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है इसमें उन्होंने कहा गया है कि हम बिल्कुल इन सिविलियन शिप्स को यहां से ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर भी जिसको कहते हैं बिल्कुल नहीं को गुजरने देंगे। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रेन लेके जाता है जो कि फैसिलिटेट किया गया था कि ग्रेन लेके जाए यूक्रेन से तो उन्होंने कहा जी कि ये इसमें बहुत खतरे हैं ये शिप्स जो हैं ये उड़ाए भी जा सकते हैं तो इसके ऊपर जो है आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। यूएस के अंदर आज हजारों ही वर्कर्स जो हैं जी दे हैव वॉक्ड आउट ऑफ द जॉब क्योंकि वो कह रहे हैं जी ना तो हमारी कंडीशन अच्छी है ना तो हमें जो है हमारे वेजेस बढ़ाए जा रहे हैं और ना तो हमारे जो है आवर्स किए जा रहे हैं और ये जो है कही जा रही है वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्राइक्स इन द कंट्रीज हेल्थ केयर सेक्टर। 75,000 वर्कर्स एट काइजर परमेंटी जो के एक लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए में उसके जो आज वर्कर्स हैं वो इनकी जो 39 हॉस्पिटल्स हैं उसमें से जमा होकर ये स्ट्राइक पे गए हुए हैं। वो कहते हैं हम ओवरवर्क्ड हैं अंडर पेड हैं हमने अपने बहुत सारे जो मेंबर्स हैं उनको लूज कर दिया था पेंडेमिक के जमाने में और उसके बाद रिकवरी नहीं हुई कोई लोग उनको आके रिप्लेस नहीं कर रहे हैं और डॉक्टर्स तो वैसे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लेकिन बाकी जो लोग हैं वो नहीं है जो कि हेल्थ केयर दे सकते हैं। काइजर ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि हम हजारों ही टेम्पररी वर्कर्स को हायर कर रहे हैं टू फिल द गैप्स, लेकिन फिर भी जो आपकी अपॉइंटमेंट्स और नॉन सर्जरी अपॉइंटमेंट्स होंगे यानी कि नॉन अर्जेंट जो प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर डिले आ सकता है। टर्की ने आज जो कर्डिश हेल्थ नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया का इलाका है उसका जो प्रोविंस है हसाका, उधर आज अटैक्स किए हैं और इसके अंदर 9 कर्डिश सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक लोगों की डेथ हुई है। और तुर्की ने यह कहा है जी कि चूंकि ये रिटेलिएशन है जो आपने बॉम्ब अटैक्स हमारे ऊपर किए थे जबकि हम शांति से रह रहे थे और ये अनप्रोवोक्ड थी, और आपको पता ही है कि तुर्की हमेशा से कहता है कि जो सीरिया के कर्ड्स हैं वो हमेशा इनके ऊपर अटैक्स करते हैं और उन्होंने बड़ी दफा सीरिया को कहा है कि इनको संभालो, लेकिन ना वो संभालते हैं और ना ही जो है इनको इनकी जो मूवमेंट है उसको कर्व किया जा सकता है। इन्होंने जो है अभी 2 दिन पहले तुर्की पे अटैक किया था और उसके जवाब में आज तुर्की ने भी उसका किया, उन्होंने कहा कि वीकेंड के ऊपर जो मिलिटेंट्स आपके हैं उन्होंने जो हमारा नुकसान किया था तो हमको उसका जवाब देना ही था। तो इसमें जो है अब दोनों तरफ जो है बॉर्डर के ऊपर तुर्की के और ये जो सीरिया का नॉर्थ ईस्ट है उसके ऊपर अब थोड़ी थोड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू जी बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज। आपको पता ही है सुल्तान भाई जो हैं वो बहुत अच्छे, उनके पास डील्स होते हैं, वो आपको हमेशा कहते हैं कि आपके अगर घर आपने किया हुआ है बुक या कि आपको अगर नए चाहिए पुराने आप अप्लायंसेज निकालना चाहते हैं तो उनके पास 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट के ऊपर आए, इनका नंबर है 9054502828। और इसके अलावा राजा बाशा जी ऑल स्टेट एजेक्स एजेंसी के अंदर होते हैं, वो कहते हैं जी 1775 तक आप डॉलर्स बचा सकते हैं अगर आपके पास 2 गाड़ियां और 1 घर है। तो आप ज्यादा अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो राजा बाशा जी को कॉल करें 6472903773।
खैबर टू बहरान की बात करते हैं, जर्नी थ्रू पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, 7 अक्टूबर कमिंग सैटरडे को है ये सेलिब्रेशन स्क्वायर में से सागा में 1 बजे से लेकर 11 बजे तक रंगारंग प्रोग्राम होगा, खा पी के आप वहां पर बच्चों के खेलने कूदने की चीजें भी होंगी, फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है, शहजाद रॉय ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान कमिंग टू परफॉर्म हियर, फन फूड एंड एंटरटेनमेंट। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं आमिर शमसी को 4166627861।
जी पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, आज वो जो है उनकी मुलाकातें थी अफगानिस्तान के जो इंटरम जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी के साथ। उसमें उन्होंने कहा है कि जी कि ये जो पाकिस्तान ने 28 डेज डेडलाइन दिया है टिल अबाउट November 1st कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स इंक्लूडिंग अफगान रेफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर जो बेतहाशा टेररिज्म के वाकयात हो रहे हैं उसके लिए जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी वो ये बताती थी कि उसके अंदर बहुत सारे अफगान नेशनल्स शामिल हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से कहा था कि ये बड़ा अनएक्सेप्टेबल डिसीजन है। उसी सिलसिले की आज इन दोनों के बीच में बात हो रही थी। पाकिस्तान के जिलानी साहब ने कहा अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के हम कोलैबोरेटिव स्पिरिट के ऊपर अमल करते हुए कलेक्टिव स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं इनके ऊपर भी जो है अमल करना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है आपके साथ बायोलेट्रल टाइज चाहता है लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो है इतनी अफरा तफरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह मीटिंग जो थी आज तिब्बत के अंदर हुई थी और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जिलानी साहब वो चाइना को विजिट कर रहे हैं फॉर द 3rd ट्रांस हिमालयन फोरम ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो कि October 4 और 5 के बीच में वहां पर हो रही थी। उसी सिलसिले में जब ये तालिबान के ऑफिशियल्स भी वहां पर आए तो उनकी मुलाकात इनसे हुई और इस सिलसिले में बातचीत की गई। इसी सिलसिले में आज जो IGP अख्तर हयात खान केपी के अंदर जो केपी के IGP हैं उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि अफगान नेशनल 75% ऑफ सुइसाइड अटैक्स जो केपी के अंदर एटलीस्ट हो रहे हैं उस पर इनका फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट जो है वो मिला है। ये लोग इन्वॉल्व थे अली मस्जिद, बाड़ा, हागू, बाजौड़ और पुलिस लाइन के सुइसाइड अटैक्स थे, उन सब के अंदर अफगान नेशनल शामिल थे। और इसके अलावा ये लोग शामिल हैं एक्सटॉर्शन केसेस में केपी में और इसमें लोकल्स भी जो हैं इनके साथ जो थे कुछ शामिल थे। तो IGP साहब का कहना था कि हमने बहुत सारे लोकल्स और अफगान्स जो हैं उनको अरेस्ट किया है फॉर दीज क्राइम्स। 76 के करीब जो है एक्सटॉर्शन केसेस रिपोर्ट किए गए थे, उसमें से जो है 49 कॉल्स जो हैं वो ट्रेस कर ली गई हैं और अब इन सबको राउंड अप किया जा रहा है। तो आज इन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि जी इसमें अफगान नेशनल्स जो हैं वो शामिल हैं। इमरान खान साहब जो हैं जी वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे और वो चाहते हैं कि जी उनके खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट में वर्डिक्ट आया था तोशाखाना केस में उसको सस्पेंड किया जाए, जिसमें कि उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। इस केस के अंदर उनके वकील जो हैं उन्होंने बात करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट को फिर से जो है वो दरखास्त की कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ उनकी सेंटेंस सस्पेंड की है, जबकि हम चाहते हैं कि पूरे का पूरा केस ही ओवरटर्न किया जाए उसकी इनकी कन्विक्शन का, जिसका कि डिसीजन आया था अगस्त 28 को। तो अब इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इसके ऊपर फिर से बात करेंगे वो। अभी जैसे अफवाह जी जिक्र कर रहे थे कि इमरान खान साहब के बहुत ही क्लोज एड उस्मान डार साहब जो हैं वो एक प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा जी कि हमको इमरान खान साहब ने स्पेसिफिक जो थी वो इंफॉर्मेशन दी थी कि आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे आप हमला करेंगे अगर इन्होंने मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की। और उन्होंने और भी बड़े रेवलेशंस करते हुए कहा कि जनाब ये इसलिए था कि ये आसिम मुनीर साहब का अपॉइंटमेंट एज आर्मी चीफ रोकना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ये